ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफेद लाइट कर दो भैया। सभी खुश हैं, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है केवल सुनने तक नहीं, परंतु साथ साथ जीवन में धारण करने तक भी। तो अभी आप क्या सुनेंगे? इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का पूरा इतिहास, कैसे ये शुरू हुआ और आज हम कहाँ पहुंचे हैं। एक छोटा सा बीज पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने रोपा और आज ये कैसा वट वृक्ष बन गया है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के फाउंडर कौन थे, उनका पूर्व नाम क्या था, कैसे ये सब कुछ स्थापित हुआ, ये कुछ बातें आपको हम बताएंगे। क्योंकि ये खुशखबरी भी आपको बताई होगी कि दादी जानकी जी ने कहा है कि वो 12 बजे हम सबसे मिलने के लिए आएंगे। कल तो किसी कारण से वो नहीं आ सके, लेकिन आज अभी कहा मैं आऊंगी। तो पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा की अद्भुत जीवन कहानी क्या है और कैसे परमात्मा ने उनको ये दिव्य नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, अर्थात सारी सृष्टि का रचयिता, जिस रचयिता के द्वारा शिव परमात्मा ने ये यज्ञ स्थापित किया और आज ये वट वृक्ष की तरह सारे विश्व में फैल चुका है और हमारे जैसी हजारों बहनें इसमें समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है और आप जैसे लाखों परिवार ईश्वरीय विद्यार्थी बन करके इन श्रेष्ठ शिक्षाओं का लाभ ले रहे हैं। तो इनका पूर्व नाम दादा लेखराज था और लखीराज बाबू के नाम से आप बहुत प्रसिद्ध जौहरी थे। बहुत साधारण परिवार में आपका जन्म हुआ, हैदराबाद सिंध में 1876 में आपका जन्म हुआ। और साधारण परिवार में जन्म होने के कारण, एक गांव में जन्म होने के कारण, तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई तो नहीं की, लेकिन उनकी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण कहाँ से कहाँ पहुँच गए, जो हीरे जवाहरातों के व्यापारी बन गए। उनका नाम हैदराबाद सिंध में बहुत प्रसिद्ध था, राजाओं महाराजाओं के साथ उनका उठना बैठना था, अंग्रेजों के साथ भी बाबा उनको भी मिलते थे, वो उनके ग्राहक थे। आप रहते हैदराबाद सिंध में थे तब एक ही अविभाजित भारत था, सिंध जो इस समय पाकिस्तान में है पर वो अविभाजित भारत का हिस्सा था। और आपकी एक बहुत बड़ी शोरूम थी, हीरे जवाहरात के गहने आप बनाकर बेचते थे, वो कलकत्ता में थी। तो कलकत्ता से हैदराबाद और मुंबई आप आना जाना करते थे। तो जितने ही बाबा धनी थे उतने ही बाबा दानी भी थे, उनका परिवार भी कोई बहुत बड़ा नहीं था, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां थी, 2 बेटे थे, और धन दान से संपन्न परिवार भी खुशहाल, बच्चों की तो शादी कर चुके थे, पोतरे दोतरे सब थे बाबा को, और कैसे ऐसे समय पर बाबा के जीवन में परिवर्तन आया। जितने धनी थे उतने दानी भी थे, उतने बड़े भक्त भी थे, बहुत पूजा करते थे, विष्णु की अटूट भक्ति करते थे, श्रीनाथ उनके इष्ट थे, श्रीनाथ का फोटो सदा अपने साथ में रखते थे। तो कैसे इतनी बड़ी भावना उनके जीवन में थी, पर फिर भी एक खोज थी, सत्यता को जानने की खोज, हम कौन हैं, ईश्वर कौन है, हम क्यों इस संसार में आए, इतना दुनिया में दुख क्यों है, बहुत प्रश्न थे उनके मन में, और उन्होंने अपने प्रश्नों के जवाब के लिए अनेक शास्त्र पढ़ डाले, यहाँ तक भी अनेक गुरु भी कर डाले, लेकिन कहीं भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो जब उनकी लगभग 60 वर्ष की उम्र थी, 1936 में एक विचित्र घटना घटी, और बाबा को विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, जो उनके इष्ट थे। तो 4 भुजाधारी विष्णु उनके सामने आके उपस्थित हो गए और उनको वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्, आप चतुर्भुज हो, जैसे मैं हूँ वैसे आप भी हो चतुर्भुज विष्णु। तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि विष्णु के अलग अलग रूपों के साक्षात्कार उनको होने लगे, और एक एक स्वरूप में उनको वही वरदान दिया, अहम चतुर्भुज तत्त्वम्। तो जब बाबा वापस ध्यान से उतरे और ये उनकी समझ में नहीं आया कि मैं इनके जैसा कैसे हूँ, मैं तो इनका भक्त हूँ, इनका दास हूँ, सेवक हूँ, क्योंकि विष्णु की भक्ति करते थे। अब जिनकी भक्ति करते थे उन्होंने, उसने साक्षात्कार में उनको वरदान दिया, तो मेरे जैसे हो। तो बाबा को ये प्रश्न मन में उठा कि इसका मतलब क्या है, तो अपने गुरु के पास जाकर उसने पूछा कि मैं विष्णु जैसे कैसे हूँ, मैं तो इनका सेवक हूँ, भक्त हूँ। तो गुरु ने उनको राय दी कि आप एकांतवास में चले जाओ तो आपको इसका जवाब मिलेगा कि भगवान ने आपको अपने जैसा कैसे स्वीकार किया। तो बाबा को ये साक्षात्कार हैदराबाद सिंध में हुआ, और बाबा बनारस चले गए। बनारस में उनके एक मित्र रहते थे, वहाँ एकांतवास करने लगे, और वहाँ पर बाबा को कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार हुआ। बाबा ने देखा कि 3 तरीके से इस कलयुगी दुनिया का विनाश हो रहा है, अणुयुद्ध के द्वारा, ग्रह युद्ध के द्वारा, और प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा विनाश हो रहा है। 3 प्रकार का विनाश बाबा ने देखा, और देखा कि जैसे प्रलय जैसी स्थिति हो गई संसार में, सब कुछ तबाह हो गया, और तबाह होने के बाद बाबा ने एक बड़ा विचित्र अनुभव किया, क्योंकि इतना विनाश देख करके बाबा को लगा ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये दुनिया ऐसे खत्म हो जाएगी। लेकिन उसके थोड़ी देर के बाद बाबा ने अखंड ज्योति का साक्षात्कार किया, परम धाम का, शांति धाम का, मुक्ति धाम का साक्षात्कार किया, जिसमें बाबा ने अनेक छोटे छोटे सितारे आत्मा रूप में देखे, वो आत्माएं सितारों के समान थी और वो आत्माएं कैसे धीरे धीरे नीचे आने लगी, धरती पर आने लगी, और एक एक सितारा एक एक देवी और देवता का रूप धारण करता गया। ये बाबा ने देखा और उसके बाद बाबा ने एक सुंदर महल देखा जिसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, सोने का महल था, लक्ष्मी और नारायण विश्व महाराजन विश्व महारानी सिंहासन पर बैठे थे, और कैसे वो सिंहासन से उठे और बगीचे में टहलने लगे। इतना सुंदर दृश्य जो बाबा ने कभी पहले इसके नहीं देखा था, प्रकृति का चरम सौंदर्य वो बाबा ने देखा। तो कहाँ एक तरफ विनाश और कहाँ दूसरी तरफ एक नया संसार। और उसी समय उनको एक आकाशवाणी हुई, एक आवाज़ उनको सुनाई दी, लखीराज उठो जागो, इस कलयुगी दुनिया के महाविनाश के बाद ऐसी सतयुगी दुनिया आने वाली है। इस कलयुग के बाद सतयुग आने वाला है और उसके लिए आपको निमित्त बनना है। विश्व परिवर्तन हो रहा है और आपके द्वारा नई सतयुगी सृष्टि की रचना करनी है। अब बाबा को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या है, लेकिन बाबा को इतना तो समझ में आया कि भगवान को उनसे कुछ ऐसा महान कार्य करवाना है। तो बाबा ने हैदराबाद सिंध से, वो वहाँ बनारस से बाबा कलकत्ता गए, कोलकाता गए, और कलकत्ता में जाकर के अपने पार्टनर को, भागीदार को ये सारी बातें बता दी। दुकान पर जैसे ही पहुंचे तो बाबा ने देखा बहुत सुंदर हीरे जवाहरातों के जेवर सजे हुए थे शोकेसेस में, लेकिन बाबा की दृष्टि बदल गई थी। बाबा को वो हीरे पत्थर दिखाई देने लगे। अब ऐसे स्थिति में बाबा धंधा कैसे करेंगे, क्योंकि परमात्मा ने उनको सच्चे रत्नों का व्यापार करने का आदेश दिया था। तो अपने भागीदार को बाबा ने सच्ची बात कह दी, बता दिया कि अब मैं ये धंधा नहीं कर सकता हूँ, मुझे भगवान ने एक और धंधा दिया है, एक विश्व परिवर्तन करने का कार्य दिया है। तो जितना उनका हिस्सा था भागीदार से अपना हिस्सा ले लिया और वापस कलकत्ता से हैदराबाद सिंध चले गए। और ये घटना सारी हुई है 1936 में। तो आज से 81 वर्ष पूर्व 1936 में जब बाबा की उम्र लगभग 60 वर्ष की थी, तो 60 वर्ष की आयु में बाबा को ये दिव्य साक्षात्कार हुए और उनका जीवन बदल गया। तो जब घर पहुंचे बाबा, वो जो उनका ठाट वाट था, कोट पैंट लकड़ी ऐसे लेके बाबा चलते थे, राजाओं महाराजाओं से चल उससे बैठते थे, अब बिल्कुल सिंपल हो गए, एकदम सिंपल उनका जीवन बदल गया था। तो घर वाले तो देख करके आश्चर्यचकित होने लगे कि ये बाबा को क्या हो गया है। तो बाबा अक्सर करके एकांतवास में रहते थे, अपने घर में भी एकदम अपने कमरे में एकांत में तपस्या करते थे, कि एक दिन अचानक बाबा को शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, जिसमें बाबा ने देखा एक बहुत चमकती हुई ज्योति, बहुत प्रकाश, बहुत शक्ति, वो धीरे धीरे कैसे उनके सामने आई और सामने आते आते उनके अंदर प्रवेश कर गए। तो बाबा ने देखा वो शक्ति उनमें समा गई और उसके बाद बाबा को इतनी शक्ति का अनुभव हुआ जो बाबा खुद भी नहीं समझ पाए कि ये क्या हो रहा है मुझे। और लोगों को भी कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे वो दिव्य शक्ति प्रवेश हुई, शिव परमात्मा की प्रवेशता हुई, उसके बाद बाबा के मुख से शिव परमात्मा ने अपनी पहचान दी, मैं निज आनंद रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं प्रकाश रूप हूँ, मैं शिव हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं शिव हूँ। ये शिव परमात्मा ने अपनी पहचान बाबा के मुख से दी। और जब बाबा होश में आए तो बाबा का जीवन एकदम और भी बदल गया था और चमत्कार होने लगे। क्या चमत्कार होने लगे? सबसे पहला चमत्कार हुआ कि बाबा खड़े होते थे और खड़े खड़े जो लोग उनको देखते थे, बाबा से वो सफेद वस्त्रधारी धोती कुर्ताधारी व्यक्ति भी दिखाई देता था, लेकिन श्री कृष्ण मोर मुकुटधारी बांसुरी बजाता हुआ पीताम्बरधारी वो उनके सामने खड़ा हो जाता था। और ब्रह्मा और बाबा जग का बुजुर्ग रूप गुम गायब और वो बच्चा श्री कृष्ण जैसे उनके सामने खड़ा है। तो बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि ये बाबा की शक्ति नहीं थी, ये परमात्मा ने अपना दिव्य चमत्कार उनके द्वारा दिखाया। और जो बाबा के सामने होते थे, उनको बाबा से जब कृष्ण का साक्षात्कार होते थे, तो ये न्यूज़ बहुत दूर दूर तक फैल गई। इतनी न्यूज़ फैल गई कि अमेरिका में टाइम मैगजीन निकलती है, अभी भी निकलती है टाइम मैगजीन, जिसमें इंटरनेशनल न्यूज़ आती है। और उस समय अखंड भारत था 1936 में, तो उस मैगजीन में ये न्यूज़ आई कि भारत में हैदराबाद सिंध में एक व्यक्ति है जिससे कृष्ण के दर्शन होते हैं, बहुत चमत्कार है उसके अंदर। और बाबा कहते थे ये मेरी शक्ति नहीं है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। पर दूर दूर से लोग बाबा के पास आते थे कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और उसमें दूसरी क्रांति ये हुई कि महिलाएं ज़्यादा आने लगी, लोगों को घर बैठे भी साक्षात्कार होने लगे। श्री कृष्ण उनको दिखाई देता था और फिर बाबा आगे दिखाई देता था, और कृष्ण उनको कहता था कि अगर मेरे से मिलना है तो इनके पास जाओ। अब इस सफ़ेद वस्त्रधारी को तो सभी नहीं जानते थे, लेकिन ढूंढ ढूंढ करके बाबा के पास पहुंच जाते थे, और बाबा को देखते ही उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होने लगता था। अब ये चमत्कार काफ़ी समय तक चला, और उसी दरमियान अनेक बहनें बाबा के पास आई, कुमारियाँ, तरुण बहनें, जवान यंग सिस्टर्स। अब उनमें से कुछ मैं मिसाल आपको दूँ, आपने देखा होगा हमारे विश्वविद्यालय में बाबा के साथ, ब्रह्मा बाबा के साथ मम्मा जगत अम्मा सरस्वती जिनको कहते हैं, आपका लौकिक नाम राधे था, राधी कहते थे। आप बचपन में बहुत सुंदर थी, बहुत कलाएं थी, गायन कला, नृत्य कला, संगीत कला, हर प्रकार की कला उनमें थी। लेकिन उनके पिता ने देह त्याग किया था, उनको अचानक हार्ट फेल हो गया, बिजनेस में घाटा पड़ा तो हार्ट फेल हो गए, और इनकी माँ बहुत रोती थी, तो ये अपनी माँ को बाबा के पास ले गई। उस समय इनकी आयु 16 साल की थी, तो बाबा के पास जैसे ले गई, वो रोती रोती बाबा के पास गई, और बाबा को देखते ही उनसे कृष्ण का दर्शन हुआ। और जैसे कृष्ण देखा वो तो हंसने लग गई। अब ये भी न्यूज़ बन गई कि राधे की माँ बाबा के पास रोती रोती आई और कृष्ण का दर्शन करके जोर जोर से हंसने लगी। एक ऐसा परिवर्तन उसने अपने जीवन में अनुभव किया। और दोनों माँ बेटी, और तो कोई था नहीं, इनके भाई भी पहले बचपन में गुजर चुके थे, तो माँ बेटी थी, पिता भी गुजर गए, तो दोनों ने अपना जीवन बाबा के आगे समर्पित किया, क्योंकि इनकी भी अपनी विशेषता थी। बाबा इनको कहते थे कि तुम ओम की ध्वनि करो, और जब वो ओम की ध्वनि करती थी तब इनसे राधे के साक्षात्कार होते थे और ब्रह्मा बाबा से कृष्ण के साक्षात्कार। तो जैसे राधे कृष्ण दोनों खड़े हैं ऐसे अनुभव करते थे सभी। तो इनका भी बहुत मान होने लगा और धीरे धीरे एक एक करके बहुत बहने आई, परिवार के परिवार आए, और आते ही आते बाबा के पास समर्पित हो गए। तो दूसरा मिसाल हम बताएं, आप दादी प्रकाशमणि जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका थी, आप भी 14-15 साल की उम्र में आई। 1936 में आप स्कूल पढ़ती थी और इनको घर बैठे बाबा का साक्षात्कार हुआ, कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। बाबा को जानती नहीं थी लेकिन किसी को बताया नहीं, और इनके पिता ज्योतिषी थे, उन्होंने इनको कहा कि आप जाकर देख कर आओ कि कैसे दादा लेखराज के पास जो जाते हैं उनको दर्शन होते हैं कृष्ण के। अब ये जैसे गई बाबा को देखा, तुरंत ट्रांस में चली गई, ध्यान में कृष्ण का साक्षात्कार किया, और बस उसने ये संकल्प किया अब तो मुझे भगवान मिल गया, कृष्ण मिल गया, क्योंकि कृष्ण की भक्ति सब करते थे हैदराबाद सिंध में। और फिर धीरे धीरे करके एक एक करके बहुत समर्पित होने लगे। बाबा ने एक स्कूल खोला था, वो स्कूल के बच्चे भी धीरे धीरे कैसे बाबा के पास समर्पित होने लगे, और एक अलौकिक परिवार बाबा का बन गया। उसमें छोटे बड़े सब मिला करके करीब 385 भाई बहनें पूर्ण रूप से बाबा के पास समर्पित हो गए, और वो अलौकिक परिवार हैदराबाद सिंध में था, लेकिन इतने सारे को रखेंगे कहाँ। तो बाबा हैदराबाद सिंध से कराची चले गए। कराची बड़ा बड़ा शहर था, तो 1937 में बाबा ने कराची में प्रस्थान किया, और ये जो छोटी छोटी बालिकाएं थी उन्होंने कैसे अपना जीवन इसमें समर्पित किया और दुनिया की निगाहों से न्यारे किनारा करके रहने लगे। वहाँ पर सागर का किनारा क्लिफ्टन बीच कराची में है, बहुत सुंदर स्थान है वो, तो वहाँ अक्सर जाकर के एक्सरसाइज करती थी, तपस्या करती थी, और बाबा मामा भी तपस्या करते थे। तो अलौकिक माँ और अलौकिक पिता, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं था, वो तो 16 साल की थी और बाबा तो 60 साल के थे, लेकिन अलौकिक मात पिता के रूप में कैसे इन्होंने सारे परिवार की, अलौकिक परिवार की पालना की, और 14 साल तक कराची में रहे। और उन 14 सालों में 1937 से लेकर के 1950 तक, ये 13-14 साल कराची में रह करके तपस्या की, और इसी तपस्या के दौरान उनके अंदर एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति जागृत हुई जिस शक्ति के बदौलत आज इतना बड़ा विश्वविद्यालय खड़ा है। और कैसे फिर इन 14 सालों के अंदर ही दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, भारत का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान ये दो देश अलग बन गए, लेकिन ये संस्था कराची में ही रही। और कैसे 1950 में जब भारत गणतंत्र बना तब इनको खुली छुट्टी मिली कि आप भारत जा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा ने इनको ये आदेश दिया कि अभी भारत में आपको हेडक्वार्टर बनाना है, किसी पहाड़ पर जाना है और वहाँ से सारे विश्व को शांति का संदेश पहुँचाना है। तो पूरी तैयारी करके कराची से निकले एक जहाज उनको मिला 1950 में, जब भारत गणतंत्र हो गया, शांति हो गई वापस दोनों देशों में, उसके बाद ये भारत में आए और इस जहाज में आए। जहाज में वहाँ कराची से प्रस्थान किया और ओखा, ओखा बंदरगाह है सौराष्ट्र में, द्वारका के पास ओखा, तो वहाँ पर ये जहाज उतरा, क्योंकि कराची से बहुत दूर नहीं है ओखा, और वहाँ से बाय ट्रेन, ओखा से ट्रेन द्वारा आबू रोड आए। और तब तक यहाँ पर उन्होंने पसंद कर लिया था कहाँ रहना है आबू में, तो ट्रेन से आबू रोड पहुँचे हैं और 14 साल की तपस्या करके दुनिया को देखा उन्होंने, क्योंकि 14 साल तक तो कुछ भी नहीं देखा, एक तपस्या करते थे, सागर के किनारे जाते थे, तब तक दुनिया सारी बदल गई। और फिर एक शक्ति उनको मिली जिसके आधार से भारत में फिर से उन्होंने सेवाएं शुरू की, और बाबा मम्मा माउंट आबू में पहाड़ों पर तपस्या करते थे, वहाँ बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जहाँ ऋषि मुनि तपस्या करते थे। तो बाबा वहाँ तपस्या करने लगे और मम्मा भी वैसी ही तपस्या करने लगी, और फिर उसके बाद बाबा मम्मा को निमंत्रण मिले, क्योंकि जो जिनके रिश्तेदार समर्पित हुए थे वो तो भारत में पहले से आ गए थे, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो हमको भी बताओ। तो कैसे बाबा ने कुछ बहनों को माउंट आबू से बाहर भेजा, तो सबसे पहले दिल्ली गए, तो आप मनोहर इंदिरा दादी हैं जो सबसे पहले दिल्ली गई, और दिल्ली में आपने प्रथम सेवा केंद्र 1952 में, 52 में आपने खोला, आपके रिश्तेदार वहीं रहते थे दिल्ली में, और दिल्ली में पहला सेवा केंद्र खुला, और उसके पश्चात भारत के कोने कोने में सेवा केंद्र खुलते गए, और धीरे धीरे भाई बहने माउंट आबू भी आने लगे। तो माउंट आबू जो स्थान है, एक तो बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, और दूसरा यहाँ राजाएं महाराजाएं गर्मी के दिनों में आकर के रहते थे माउंट आबू में, तो बड़े बड़े महल है चारों तरफ और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के महल, तो गर्मी के दिनों में वो रहते थे। तो जब भारत का बंटवारा हुआ और सारे राजे रजवाड़े सब खत्म हो गए, राजाई खत्म हो गई, तो इन राजाओं ने इन महलों को होटल बना दिया। तो माउंट आबू में अभी आपको जो मिलेंगे पैलेसेस मिलेंगे, महल मिलेंगे, ये सब होटल है, और या तो होटल है या तो स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल्स है। तो ये संस्था ने भी एक ऐसा स्थान लिया जिसको भरतपुर राजा का महल कहते हैं, वो महल किराए पर लिया, क्योंकि राजाओं ने किराए पर दे दिए, होटल बना दिए, स्कूल बना दिए, तो वहाँ वो रहते थे। और कैसे धीरे धीरे हमारे सेवा केंद्र चारों तरफ खुलते गए, और मम्मा बाबा बाहर जाते थे, वहाँ भाई बहनों से मिलते थे, दादी जी आ गए हैं।